मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 13 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही फ्रेंड्स, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं राजेंद्र अनुरागी खंडवा मध्य प्रदेश से, रमित सिंह खतिमा उत्तर प्रदेश से, विवेक कुमार धवन नई दिल्ली से, अमित कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अक्षय पदीर पुणे महाराष्ट्र से और रवि रंजन कुमार गुप्ता पूर्वी चंपारण बिहार से। तो राजेंद्र अनुरागी, रमित, विवेक, अमित, अक्षय और रवि रंजन, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों के सामने एक मेल के शब्द रखना चाह रहा हूं जिसे निशा निमोरिया ने भेजा है, जो हमारे अभी 7th बैच की स्टूडेंट रही हैं। छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा सा है, तो मुझे लगा कि ये मुझे आप सबके सामने रख करके और उनके प्रति प्रशंसा के भाव व्यक्त करने चाहिए। डायरेक्ट प्रशंसा न करके उनके शब्दों को पढ़ करके ही मुझे अपनी प्रशंसा उनके प्रति उन तक पहुंचानी चाहिए। निशा निमोरिया ने देखिए लिखा है कि सर, मुझे बेहद खुशी है कि मुझे आपके पास जाने का मौका मिला। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा अनुशासित रख पा रही हूं। थैंक यू सर। मेरे पेरेंट्स अब मुझसे और मेरे बिहेवियर से बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। काश आपके पास रहने का और टाइम मिल पाता। मित्रों, ये निशा निमोरिया का मेल है, ये शब्द उन्होंने लिखे हैं। निशा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दूर भले ही आप एकेडमी से हैं, मेरे सभी 7th बैच के जो स्टूडेंट हैं दूर होकर भी दूर नहीं हैं। जब तक एक दूसरे के प्रति एहसास है, मानकर चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के पास ही हैं। मैंने हालांकि एक स्टूडेंट का मेल पढ़ा है, इस तरह के बहुत से मेल मुझे और भी स्टूडेंट लिख करके भेज रहे हैं। मैं उन सब के मेल को पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन खासकर ऐसे मेल लिखने वाले अपने सभी स्टूडेंट्स के प्रति मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, एक मुझे आप सबको सूचना देनी है और सूचना यह है कि 3-4 दिन पहले YouTube पर मेरा एक प्रोग्राम डाला गया सिलेबस को लेकर, जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस को लेकर। उसमें मैंने फर्स्ट पेपर के सिलेबस को समझाने की कोशिश की है। 7th बैच के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को से सिलेबस की बात नहीं की थी, क्योंकि हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेना था, तो उसी पर मेरा ज्यादा जोर था कि उनको कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, ये मैंने फिर आप लोगों को बताया था। तो इन दो सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन बाकी चीजें रह गई थी। तो मैं चाहूंगा कि न केवल 7th बैच या पहले बैच के जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं वही इस यूट्यूब के प्रोग्राम को देखें, बल्कि आप सब भी प्रिय श्रोता जो डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, वे भी प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। हमारी प्रिपरेशन की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है फ्रेंड्स कि हम पढ़ने तो लगते हैं और खूब पढ़ते भी हैं और खूब मेहनत भी करते हैं, हमें लगता है कि हमारी तैयारी भी हो गई है और सच पूछे तो एग्जाम भी ठीक ही ठाक जाता है, लेकिन जिसके लिए सब कर रहे थे वह नहीं हो पाता और वह था परीक्षा परिणाम। उसका कारण यह होता है कि हम सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं जान पाते। तो फ्रेंड्स, आप यह प्रोग्राम जरूर देखने की कोशिश करें, जहमत उठाएं, थोड़ा सा वक्त निकालें। हालांकि 19-20 मिनट का ही है, लेकिन ये 19-20 मिनट का जो प्रोग्राम है आपके आगे की जो इतनी लंबी तैयारी होगी उन्हें एक ठोस रूप दे सकेगा। और मैं तो बल्कि यहां तक आप सबको सजेस्ट करूंगा कि इसे एक बार ही आप मत सुने, एक बार ही मत देखें, कई कई बार देखें, बीच बीच में देखते रहें, क्योंकि तभी जो सिलेबस है उसका बहुत अच्छे तरीके से खुलासा आपके दिमाग में हो पाएगा। फ्रेंड्स, जहां तक मुख्य विषय की बात है, आज हम लोग एशियन और एपिक पर बात करेंगे। एशियन और एपिक, ये दो संगठन है, इन पर बात करेंगे। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आज हमारे पास न्यूज एनालिसिस में इन दो के सिवाय बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। ये दो ही टॉपिक है। न्यूज आप लोगों ने सुनी ही है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि कोई बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट बातें नहीं है जो न्यूज में कही गई हो। जैसे एक बैंक के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि हमारे जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, वो किस तरीके से सोशल अपना रोल प्ले कर रही है, वित्तीय समावेशन के लिए भी और ऋण देने के लिए भी। इस तरह की बात उन्होंने कही, तो बहुत ही जनरल किस्म की बातें थी। अदरवाइज न्यूज में ऐसा कुछ है नहीं जिसको लेकर के आज हम कुछ बातें कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं ये दो संगठनों के बारे में आपसे विशेष रूप से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है कि मैं इन दोनों पर आपसे बात करने जा रहा हूं। पहले ये जानना बहुत जरूरी है, उसका कारण यह है फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस का सिलेबस अपने आप में इतना व्यापक और काफी कुछ अस्पष्ट भी होता है कि आप कितना पढ़ेंगे, और अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो यह मान करके चलिए कि फिर सब कुछ आपके हाथ से छूटता चला जाएगा। आपको लग तो रहा है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे जो बात बननी चाहिए वह बात बन नहीं रही है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो पढ़ें उसके पीछे एक सोची समझी हमारी रणनीति हो, और उसका संबंध हमारे सिलेबस से हो, और साथ ही साथ हमारे अनसॉल्व्ड पेपर से भी हो। क्योंकि सिलेबस से भी ऐसा नहीं है कि सभी चीजें समान रूप से पूछी जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अब सवाल यह है कि एपिक और एशियन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। यदि आप मुझे थोड़े से भी लंबे समय से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली समझ चुके होंगे। उसका कारण साफ है कि ये जो दोनों संगठनों में जो शामिल राष्ट्र हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस मायने में ही नहीं है कि इसमें कुछ दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं, बल्कि इसलिए भी है कि वो जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के बहुत पड़ोस में हैं, पड़ोसी देश हैं, हमारी नेबर कंट्रीज हैं, और नेबर कंट्री होने के नाते हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आप इन दोनों संगठनों को थोड़ा सा देखिए और फिर आप नेबर कंट्रीज के रूप में इन्हें सही मायने में वर्गीकृत कर पाएंगे। पहली बात तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, और मैं बार बार आप सबको याद भी दिलाता रहता हूं, और इनफैक्ट मैं इस बात की आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, बावजूद इसके कि आप जानते हैं मेरी मजबूरी यह है कि चूंकि इसमें नए नए स्टूडेंट्स लगातार जुड़ते चले जाते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं कुछ चीजों को रिपीट करूं। और वह यह है कि प्लीज, जब भी हम ऐसी बातें करें, आपके हाथ में आपका एटलस होना चाहिए, या आपके दीवार में आपके सामने विश्व का नक्शा जरूर होना चाहिए। बिना नक्शे के अगर आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय तो बातें समझ में आ जाएंगी और आपको यह विश्वास भी हो जाएगा कि मुझे समझ में आ गई है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होगा नहीं। तो प्लीज, बिना मैप के आप न पढ़ें, राइट? अब अगर हम एपिक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको चाहिए कि आप उसे खोलें और फिर नाम से जाएं, संस्था के नाम से जाएं, संगठन के नाम से जाएं। अब देखिए, इसका संगठन का नाम क्या है। ए स्टैंड फॉर एशिया, पी स्टैंड फॉर पैसिफिक, ई इकोनॉमिक और सी कोऑपरेशन। एशिया, पैसिफिक, इकोनॉमिक, कोऑपरेशन, यू कह लीजिए एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, हिंदी में नाम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस संगठन में वो देश हैं जो एशिया के कुछ देश हो गए, एशिया महाद्वीप के कुछ देश हो गए, राइट? इसके बाद प्रशांत क्षेत्र, तो प्रशांत जो है वो एक महासागर है, तो आपको ढूंढना चाहिए कि ये प्रशांत महासागर कहां है, कहां कहां तक फैला हुआ है। प्रशांत हो गया, प्रशांत महासागर में जो देश स्थित हैं, कुछ वे देश। इसके बाद फिर आपका है इकोनॉमिक, यानी कि ये जो संगठन है ये केवल इकोनॉमिक से रिलेटेड है, आर्थिक सहयोग, कोऑपरेशन, यानी कि यह एक ऐसा संगठन है जो इन देशों के बीच, जिसमें एशिया के कुछ देश हैं जो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ प्रशांत महासागर के जो कुछ देश हैं, और इन देशों के बीच में परस्पर आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे कहा गया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और बकायदे उस प्रशांत महासागर को देखना चाहिए कि प्रशांत महासागर कहां कहां फैला हुआ है। देखिए, जब हम महासागरों के नाम लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे सामने तीन सबसे बड़े महासागर आते हैं। आपको मालूम है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अब यह बात अलग है कि फिर प्रशांत महासागर में नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक, इस तरह से उसके आप कह लीजिए विभाजन होते चलते हैं। जब आप प्रशांत महासागर को देखेंगे तो उसमें आपको दूसरे बहुत से महासागर दिखाई देंगे। महासागर तो नहीं दिखाई देंगे, सागर दिखाई देंगे, समुद्र दिखाई देंगे। चाइना सी आपको इसी में दिखाई देगा, लेकिन इंडियन ओशन है। याद रखिए कि जो इंडियन है वो अपने आप में महासागर है, हिंद महासागर है। तो आपको चाइना का दिखाई देगा, चाइना सी दिखाई देगा, आपको इस तरह से बहुत छोटे 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 समुद्र दिखाई देंगे। उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली प्रशांत महासागर के ही हिस्से हैं। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहां अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, अलग से हम कहते हैं ना कि अरब सागर, जो बंबई वगैरह है हमारे अरब सागर के तट पर है, जो कोलकाता है वो हमारे बंगाल की खाड़ी के तट पर है, लेकिन ये सब हिंद महासागर के पार्ट हैं। जब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के साथ साथ आप ये समझ पाएंगे कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। जब आप सदस्य को समझ लेंगे और जब आप इस क्षेत्र की समस्याओं को समझ लेंगे तो बट नेचुरल है कि फिर आप इस संगठन के महत्व को अपने आप समझ लेंगे। जैसे मैं अब आपको इस संगठन के कुछ देशों के नाम बताता हूं, वैसे लंबी सूची है क्योंकि इसमें लगभग 21 मेंबर्स हैं, 21 राष्ट्र इस संगठन के सदस्य हैं। इसमें से कुछ के नाम देखिए कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में इंपॉर्टेंट कंट्री है, कनाडा इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहां अमेरिका, आप देखिए कि प्रशांत महासागर के तट पर है, आप नक्शा देखेंगे तो, चीन, जापान, रूस, सोच करके देखिए कि ये सारे के सारे बड़े राष्ट्र जिन्हें हम एक तरीके से महाशक्ति कहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है कनाडा वगैरह उसमें नहीं आते लेकिन एक आर्थिक रूप से बहुत उन्नत राष्ट्र है, वो सब के सब एपेक के मेंबर हैं। तो आपके दिमाग में इमीडिएट ये इमेज बनेगी कि नहीं यार, मतलब ये जो संगठन है ये महत्वपूर्ण संगठन तो है। और आपने ये भी फिर न्यूज में सुना है कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है कि इसका जो पर्पज है वो है आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। 89 में यह संगठन बना था, राइट। भारत के लिए देखिए, अब आपको देखना पड़ेगा कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ ऐसे देश में जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, सिंगापुर है, आप देखिए कि एशिया महाद्वीप के देश है और भारत के लगभग लगभग पड़ोस में है, और भारत अपने लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क है, और फिर इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो चाइना सी है और हिंद महासागर है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको मालूम है कि किस तरीके से चीन लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उस क्षेत्र के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो चीन का विरोध भी कर रहे हैं, और हिंद महासागर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है निर्यात व्यापार, आयात निर्यात व्यापार की दृष्टि से भी। तो ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि चूंकि एपेक में चाइना भी मेंबर है तो भारत के लिए यह मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपनी तरफ से भी उसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने लिए एक तरीके से धारणा बना सकते हैं कि आपको किस तरह से इस टॉपिक को देखना है। अदरवाइज तो टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन आपको बहुत बड़े रूप में नहीं देखना है, इस टॉपिक को आपको सिर्फ भारतीय संदर्भ में ही देखना और समझना है। हम देखेंगे दोस्तों इस पर आगे चल करके जो आर्टिकल्स आएंगे इसके क्या नतीजे हैं, क्या लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, इस पर आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, तब फिर हम लोग इस पर संभव हुआ तो आगे बातें करेंगे। फ्रेंड्स, अब दूसरा जो सम्मेलन है वो एशियाई का सम्मेलन है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि प्री में जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एपेक की अभी जो मीटिंग हुई है वो वियतनाम में हुई है, राइट। अब हम एशियन पर बात करते हैं जहां अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में हो रही है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एशियन का जो की जो शिखर सम्मेलन जो हो रहा है फ्रेंड्स, ये उसकी 50वीं वर्षगांठ में हो रहा है। 50वीं वर्षगांठ, 50 साल इस संगठन के पूरे हुए हैं। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी और 5 देशों ने इस संगठन की स्थापना की थी। ये आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए क्योंकि देखिए 50वीं वर्षगांठ बहुत ज्यादा मायने रखती है, राइट। तो 2017 है तो आप 50 घटा देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1967 में ये बना, लेकिन इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और थोड़े से घुमावदार भी होते हैं। ये हैं फ्रेंड्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये इन 5 देशों ने इस संगठन की स्थापना की है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। हाँ, इस संगठन का जो उद्देश्य था आपस में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था, और ये जो संगठन है इसे यूएनओ में ऑफिशियल ऑब्जर्वेशन का भी दर्जा प्राप्त है, यानी कि ये ऑफिशियली वहां एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ग्लोबल रेपुटेशन की इकाई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब विश्व में भी इसकी अपनी प्रतिष्ठा है। हालांकि इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, मतलब इसके जो देश हैं वो जो दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के लगभग लगभग 8.8% को कवर करते हैं। बस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे 50 साल में अपनी एक विश्व स्तर की प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। जहां तक भारत का संबंध है मित्रों, उसके बारे में भी अब हम लेखों की प्रतीक्षा करेंगे। आप अगर इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं या तैयारी के दौरान आपने इतिहास पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि भारत के इस क्षेत्र के देशों से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। यहां तक कि हड़प्पा वगैरह संस्कृति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप मेसोपोटामिया वगैरह की चर्चा आपको मिलेगी कि कैसे वहां हमारी चीजें मिली हैं, उनकी चीजें हमारे यहां मिली, तब से भारत का वहां व्यापार होता रहा है और साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। तो अब उसकी हम लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा करते हैं। दोस्तों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, चंदन सिंह कंवर, अंशुल उत्तर प्रदेश से, इरफान मोहम्मद बारन राजस्थान से, रवि आर्यन, रचना बिंदल आगरा उत्तर प्रदेश से, गंगा प्रसाद उत्तराखंड से, मुहर्रम अंसारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, शर्मिला कुमारी, पूजा चौहान दिल्ली से और दुर्गेश गुप्ता देवरिया उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।